पृष्ठ संख्या 44। माया भी शुभ में बदल जाती है, दबे हुए मन में सौ सौ वसंत फूट पड़ते हैं। डॉट डॉट पूर्व विराम। यही है निराला के इन प्रेम गीतों की उपलब्धि, उनका भावसार, उनका भीतरी महत्व, जिसे बार बार लौट लौट कर कवि चित्रित करता है। उसकी अभिव्यंजना में अपने को पूरी तरह खाली कर देना चाहता है, लेकिन यह सुख, आत्मतोष, यह आत्ममुक्ति बार बार उसे अभिव्यक्ति के लिए घेरती है। वह रस स्रोत कभी सूखता नहीं, क्योंकि उसका अंत मानसिक शारीरिक विश्रांति में नहीं होता, उसका अंत आत्ममुक्ति में होता है, जो कवि को मिली हुई अनमोल मणि है। इसीलिए उसके मन में कोई संशय, भेद और संभ्रम नहीं है। प्रेम को आंतरिक और बाह्य परम पावन अनुभूति से मंडित करके उसे आत्ममुक्ति के सोपान तक ले जाने वाले कवि आधुनिक युग में अकेले निराला हैं। व्यक्तिगतता का इतना प्रसार, आत्म साक्षात्कार की सघन अनुभूति की इतनी पवित्र अभिव्यक्ति, अपने निजत्व की समीपतम पहचान की इतनी प्रखर और भावमयी अभिव्यक्ति किसी दूसरे कवि में नहीं मिलती। इस तरह के मांसल देह सौंदर्य को मुक्ति के धरातल तक रविंद्रनाथ ने भी इतनी खूबसूरती, सघनता और असाधारणता से नहीं उठाया है। इसके लिए एक ही उदाहरण काफी होगा, अपनी एक प्रेम कविता रात्रि ओ प्रभाते में रविंद्रनाथ ने नारी के प्रेयसी और देवी रूप का बड़ा ही सुंदर, कोमल और पावन चित्रण किया है। पृष्ठ संख्या 45। एक काल मधुयामिनी ते ज्योत्सना निशी थे कुंज कानने सुखे, फेनिलोच्छल यौवन सुरा धरे छितो मार मुखे, तुमि चेये मोर आँखि परे धीरे पात्र लयेच करे, हेसे करियाछ पान चुम्बन भरा सरस बिम्बा धरे, काल मधुयामिनी ते ज्योत्सना निशी थे मधुर आवेश भरे, तौ अवगुंठन खानि आमि खुले फेले छिनु टानी, आमि केड़े रेखे छिनु वक्षे तोमार कमल कोमल पाणी, भावे निमीलित तौ युगल नयन मुखे नाहे छिलवाड़ी, आमि शिथिल करिया पाश खुले दिए छिनु केशराश, तौ आमनित मुख खानी सुखे थुए छिनु बुके आनी, तुमि सकल सुहाग साये छिले सखी हासी मुकुलित मुखे, काली मधुयामिनी ते ज्योत्सना निशी थे नवीन मिलन सुखे। दो आज निर्मल वाय शांत ऊषाय निर्जन नदी तीरे, स्नान अवसाने शुभ्र वसना चलियाछ धीरे धीरे, तुमि वाम करे लये साजी कत तुलिछ पुष्पराजी, दूर देवालय तले उषार रागिणी बांसिते उठि छे बाजी, एई निर्मल वाय शांत उषाय जाह्नवी तीरे आजी, देवी तौ सिंथि मूले लेखा नौ अरुण सिंदूर रेखा, तौ वाम बाहु बेड़ी शंख वलय तरुण इंदुलेखा, एक मंगलमयी मूरति विकास प्रभाते दितेच देखा, राते प्रेयसीर रूप धरी तुम ऐसेच प्राणेश्वरी, प्राते कखन देवीर वेशे तुम समुखे उदले हेसे, आमि संभ्रम भरे रएछि दाड़े दूरे अनवत शिरे, आज निर्मल वाय शांत उषाय निर्जन नदी तीरे। पृष्ठ संख्या 46। यहाँ पूरी कविता मैंने अभिप्रायवश उद्धृत की है। एक तो इस पूरी कविता का शिल्प संगठन कुछ ऐसा है कि उसे खंड रूप में उद्धृत करके उसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता। दूसरे इसी संदर्भ की निराला की एक पूरी कविता स्पर्श से लाज लगी, गीतिका गीत संख्या 28 पीछे उद्धृत की है। दोनों कविताओं का कथ लगभग एक ही है, लेकिन दोनों की भाषिक संरचना, बिंब संयोजन, संवेदन सूक्ष्मता और भाव प्रसार में बहुत अंतर है। रविंद्रनाथ की कविता में स्त्री के उसी मांसल्य सौंदर्य को देवित्व के स्तर पर उठाने के लिए बड़ा तामझाम इस्तेमाल किया गया है। निराला की कविता की मूल संवेदना इससे थोड़ी सी पृथक भी है। उसका कथन इतना स्थूल और सपाट नहीं है जितना रविंद्रनाथ का। कथ्य की इसी स्थूलता और सपाटता के कारण रविंद्रनाथ की भाषिक संरचना और शिल्प संगठन भी बावजूद अपने सारे माधुर्य और तत्समता के सपाट हो गया है। रविंद्रनाथ ने पूरी कविता को बहुत स्थूल ढंग से दो भागों में विभाजित करके उसके कथ्य को संप्रेषित किया है। प्रथम भाग में प्रेसी का रूप और द्वितीय भाग में देवी का रूप। रविंद्रनाथ ने कविता के अंत में यह अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कि ये दोनों रूप परस्पर विरोधी हैं और इसीलिए आश्चर्य में डालते हैं। रविंद्रनाथ कविता में इस विरोधाभास के भीतर धसकर उसके सत्य की खोज नहीं करते, बल्कि संभ्रम भरे रयेछि डाढ़े दूर अनवत शिरे कहकर अपने आश्चर्य को अनिश्चय में ही कविता का अंत करते हैं। निराला की कविता में इस तरह की शिल्पगत और संघटनगत स्थूलता और सपाटता कहीं नहीं है। उसमें शब्दों का एक सघन रचाव है और हर शब्द एक बिंब बनकर कथ्य के विकास को कदम दर कदम आगे बढ़ाता है। निराला के शब्द बंध के भीतर घुली हुई बिंब संक्षिप्ति दर्शनीय है। वह शब्दों में घटनाओं का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि परिस्थिति की संगोपन सघनता को अत्यंत सूक्ष्म ढंग से संकेतित करते चलते हैं। इसकी जगह रविंद्रनाथ आंचल हटाने, वक्ष पर हाथ रखने, चुंबन लेने, केशराशि खोलने का स्थूल विवरण करते हैं। इस तरह यह ऊपरी विवरणात्मकता संभोग को अत्यंत सपाट और मुखर बना देती है। पाठक उसकी स्थूलता से उसे स्थूल रूप में ही प्रत्यक्ष करता है, जबकि निराला के शब्द चित्रों में गूढ़ संकेत प्रमुख हैं। चुंबन कहकर भी निराला चुंबन की स्थूलता तक नहीं जाते। निराला के लिए यह स्थूल रूप में घटित हो चुका है। निराला उसकी घटनात्मकता को अतीत में रखकर ही शुरू करते हैं, इसीलिए उसमें चूमना प्रमुख नहीं है। चूमने का प्रभाव मुख्य है। चुंबन चकित चतुर दिक् चंचल कहकर निराला चूमने के प्रभाव को अंकित करते हैं। रविंद्रनाथ की तरह हेसे करियाच पान चुंबन भरा सरस बिंबाधरे कहकर उसे एक स्थूल क्रिया तक सीमित नहीं कर देते। जहाँ निराला में अधरासो पान का जिक्र आया है, वह अंश भी रविंद्रनाथ की यौवन सुरा की तरह मात्र स्थूल कथन नहीं है। कंठ लगी उरगी कहकर निराला वासना के मारक जहर को अत्यंत पृष्ठ संख्या 47 सघनता और सूक्ष्म बिंब से उजागर कर देते हैं। यह बिंब एक ही साथ दृश्य और अनुभव गम्य दोनों ही हैं। दृश्य के रूप में निराला इस बिंब के द्वारा वक्राकार गोल कटावदार सुंदर स्त्री को कसे हुए आलिंगन में मूर्त करना चाहते हैं और अनुभव गम्य बिंब के रूप में उरगी कहकर वह वासना के मारक जहर से उत्पन्न अनंत व्याकुलता और मदहोशी के भाव को संप्रेषित करते हैं। निराला जिस अनुभव को कभी हास फिरदास सांस बल कहकर संप्रेषित कर देते हैं, उसके लिए रविंद्रनाथ को पंक्ति दर पंक्ति के स्थूल विवरणों पर उतरना पड़ा है। फिर रविंद्रनाथ की तरह प्रेयसी के देवी रूप पर निराला के मन में कोई संशय आश्चर्य और चाकचक्य भाव नहीं है। वह इस परिणति को पहले से ही जानते हैं। स्थूल देह भोग उनका लक्ष्य नहीं है, वह तो वह प्रक्रिया है जिसके भीतर से गुजर कर निराला प्रेम के अमर अंकुर को अपने भीतर उगा हुआ पाते हैं। उसे एक निर्मल तत्व ज्ञान तंतु के रूप में स्वीकार करते हैं। यही ज्ञान तंतु इस सृष्टि की रहस्यात्मकता से उत्पन्न अनाम भय को दूर करता है। स्वच्छता, पावनता, आत्मतोष और निष्काम मुक्ति जिससे उपलब्ध होने वाले अमर मूल्य हैं। इस तरह कथ्य में समानता होते हुए भी भाषिक संरचना, शिल्प संगठन और संप्रेषण के लिहाज से रविंद्रनाथ की कविता की तुलना निराला की कविता से नहीं की जा सकती। यहाँ निराला रविंद्रनाथ से बहुत ऊंचे दर्जे की प्रतिभा और ओजस्वी वाग्मिता के कवि ठहरते हैं, और रविंद्रनाथ उनके सामने एक अत्यंत स्थूल व्यंजना में उथले और साधारण कवि लगते हैं। इसके अतिरिक्त भी रविंद्रनाथ की कविता में कई तरह की पुनरावृत्तियां हैं। उसके तामझाम में मधुयामिनी कुंज कानन भी है, फिर निर्मल हवा में सुबह का नदी का किनारा भी है। ये सारे शब्द एक खास तरह की मानसिक बनावट और पारंपरिकता की ओर संकेत करते हैं। अगर जाह्नवी तीरे की जगह यमुना तीरे होता तो यह पूरा भाव संवेदन प्रकांतर से कृष्ण और राधा में प्रतिरूपित हो जाता। नहीं भी हुआ है तब भी यह सारा तामझाम उनकी अनगूंज तो देता ही है। फिर यह एक सुविधा संपन्न आदमी की प्रणय कथा है जिसके पास रात में विहार करने के लिए कुंज भी है और सुबह नहाने के लिए निर्जन नदी का किनारा भी है, यानी कि वह कोई प्राइवेट घाट होगा जिस पर नहाने की इजाज़त जन सामान्य को नहीं होगी। इन्हीं अर्थों में इस कविता का पूरा संप्रेषण एक खास प्रकार की दूरी का अनुभव कराता है। सारे अनुभव को हमारे अंदर प्रतिमूर्त नहीं करता। निराला की कविता में इस तरह की टिम टाम नहीं है, क्योंकि वह एक जनसाधारण का भाव संवेदन है। उसके पास कुंज और प्राइवेट घाट नहीं है। चांदनी रात में विहार करने का उन्मुक्त साधन और एकांतिकता नहीं है। निराला की कविता का सारा संगोपन प्रेम शायद एक कमरे में घटित होता है जहाँ प्राइवेसी तो पृष्ठ संख्या 48 है, लेकिन वह समग्र जनसाधारण की प्राइवेसी का पर्याय बन जाती है। उसमें उस तरह की पारंपरिक अनुगूंज देने वाले प्रसंग भी नहीं हैं। इस तरह इन सभी दृष्टियों से निराला की कविता अधिक सशक्त, मार्मिक, पूर्ण और गहरी बन पड़ी है। आह्लाद, सुख, आत्मतोष, पावनता, निष्कामता और आत्ममुक्ति की प्रधानता के बावजूद निराला के कुछ प्रेम गीत ऐसे भी हैं जिनमें दुख भाव की प्रधानता है। यद्यपि इन गीतों की संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी प्रेम में आत्मसंताप की अभिव्यक्ति बड़े ही सशक्त ढंग से यहाँ हुई है। इन गीतों में भी पारंपरिकता का कमतम आभास मिलता है। इनमें भी कवि के निजत्व की समीपतम पहचान की अभिव्यक्त व्यक्त हुई है। इस तरह विरह के पुराने अर्थ में इन गीतों को नहीं लिया जा सकता। इस तरह के गीतों में स्मरण भाव प्रमुख है। लगभग सभी गीतों में सुखकर अतीत के दृश्य चित्र उपस्थित किए गए हैं। इस स्मरण भाव के माध्यम से कवि ने अत्यंत डूबकर नारी सौंदर्य चित्रण किया है। ऐसे गीतों की कोमल और भार्दव भरी भाषिक संरचना दर्शनीय है। परिमल की स्मृति एक प्रकार से इस तरह के समरण भाव की प्रतीक कविता है। यद्यपि इसके समर्पण शब्द बंध और ध्वनि संयोग पर पंथ का प्रभाव साफ झलकता है। स्मृति कविता का स्मरण भाव निराला की दूसरी कविता यमुना के प्रति किसी अतीतोन्मुखता की याद दिलाता है। अंतर यही है कि यहाँ स्मरण भाव निजी है, किसी प्राचीन इतिवृत्त के माध्यम से नहीं आया है। इसीलिए जहाँ यमुना के प्रति में आने वाले बिंब अवैयक्तिक हैं, वहाँ स्मृति के बिंब एकदम वैयक्तिक। लेकिन इस कविता में भी विरह भाव प्रमुख नहीं है। इस तरह की दूसरी कविताओं में भी, चाहे वह तरंगों के प्रति हो, संध्या सुंदरी हो, प्रिया के प्रति हो, निवेदन या अनामिका की मरणादृश्य और यहीं अथवा अर्चना का प्रसिद्ध गीत बांधो ननाओ इष्ठाओं, सभी में स्मरण भाव में आया हुआ दग्ध सौंदर्य ही प्रमुख है। उसमें गदल अश्रु भावुकता कहीं नहीं झलकती। कहीं कहीं किन्हीं गीतों में उलाहना और व्यंग्य का भाव इस दुख भाव में मिला हुआ है। जैसे आँख लगाई जब से हमने चैन न पाई, जैसे अर्चना के एक गीत में इस तरह के व्यंग्य और उलाहने से निराला दुख की भावोच्छलता को संतुलित करते हैं। इन्हीं अर्थों में वह विरही कवि न होकर एक आधुनिक कवि बन जाते हैं। उनमें दुख का हरहराता ज्वार है, आत्म जर्जरता भी है, दैन भी है, लेकिन अपनी इस मना स्थिति को उन्होंने प्रेम को संदर्भ बनाकर अभिव्यक्त नहीं किया है। अपनी इस दुर्दम नैराश्य भावना को उन्होंने अपने जीवन के दूसरे कठोर संघर्षों को संदर्भ बनाकर व्यक्त किया है। कभी-कभी उन्हें मुझे स्नेह क्या मिल न सकेगा जैसा अनुभव घिरता जरूर है, लेकिन यह भी प्रेम का संदर्भ न होकर करुणा करके कृपा भाव के प्रार्थना प्रश्न के रूप में फूटता है। यही दूसरी बात है कि उनके मस्तिष्क में जब भी पृष्ठ संख्या 49 प्रेम शून्यता का बवंडर मंडलाता है, वे इसी भाव की प्रश्नवाची मुद्रा अपनाते हुए दिखाई देते हैं। एक जब कहीं झड़ जाएंगे वे कह न पाएगी, वह हमारी मौन भाषा क्या सुनाएगी, फिर किधर को हम बहेंगे तुम किधर होगे, क्या कहेंगे भी कि हाँ पहचानते। दो कैसा था अतीत वह अब यह बीत रहा है कैसा काल, क्या तुम व्याकुल होती मेरे दुख पर रोती। तीन किसके स्वर में आज मिला दोगी वर्षों का गान, आज तुम्हारा किस विशाल वक्षस्थल में अवसान, बहती जाती साथ तुम्हारे स्मृतियाँ कितनी, दग्ध चिता के कितने हाहाकार। चार छिपी जो छवि छिप जाने दो, खोलते हुए तुम्हें क्यों चाओ, दुखद वह झलक न आने दो हमें खेने भी तो दो नाओ, हुए क्रमशः दुर्बल एहात दूसरे और न कोई साथ। पांच अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कभी का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। ये सारे उदाहरण निराला के उन गीतों से लिए गए हैं जिनमें स्मरण भाव और प्रश्न की मुद्रा प्रमुख है। आत्मसंताप का एक नुकीलापन है जो रह रहकर गढ़ता है, लेकिन ये सभी उदाहरण प्रेम गीतों से नहीं लिए गए हैं। तीसरा उदाहरण तरंगों के प्रति नामक कविता से लिया गया है और पांचवा संध्या सुंदरी से। आगे हम पृष्ठ संख्या 50 देखेंगे कि निराला ने अपनी इस तरह की कविताओं को ही मुक्त गीत कहा है। बहरहाल इन दोनों कविताओं का मुख्य विषय प्रेम नहीं है, इनमें प्रकृति में मानवीय व्यापारों का अत्यंत सघन प्रतिरोपण है। तरंगों के प्रति की सारी बिंबमाला तैरती हुई सुंदर मस्तानी औरत को चित्रित करती है और संध्या सुंदरी में एक सुंदर कोमल शांत स्त्री का चित्र कवि ने खड़ा किया है। लेकिन ये तटस्थ बिंबमालाएं मात्र नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो ये कविताएं मानवीकरण का अत्यंत सफल, सुंदर, कोमल और सांद्र पारंपरिक निर्वाह मात्र बनकर रह जाती। लेकिन ये कविताएं मात्र निर्वाह की कविताएं नहीं हैं। कारण वही है, कविता के अंत में आते आते निराला ने उसे अपने निजत्व से जोड़ दिया है। इस अंत से पूरी कविता का अर्थ ही उलट जाता है। अंत में जब हम शुरू की ओर बढ़ते हैं तो अचानक लगता है कि इस सारे प्रतिरोपण में कवि का वही स्मरण भाव छिपा हुआ है। उसी में से वह नितांत निजी बिंबमालाएं निकाल कर कभी तरंगों में, कभी संध्या में, कभी रूखी डाल में, कभी विरह वृंत की कोमल कुंदकली में प्रतिमूर्तित करता है। इन्हीं अर्थों में और इसी नुक्ते पर आकर ये कविताएं मात्र प्रकृति और मानव व्यापारों के कलात्मक संयोजन की कविताएं न होकर संतप्त प्रेम की कविताएं बन जाती हैं। लेकिन पहले, दूसरे और चौथे उदाहरण में यह स्मरण भाव बिल्कुल प्रत्यक्ष है। पहला उदाहरण परिमल की निवेदन नामक कविता से लिया गया है। इस कविता की अत्यंत विशद व्याख्या निराला ने स्वयं अपने निबंध मेरे गीत और कला में एक जगह की है। उन्होंने इसे मुक्त प्रेम, फ्री लव की कविता कहा है। मुक्त प्रेम क्यों? क्योंकि एक तो इसमें छूटने की गहरी पहचान है। प्रेम और स्मरण और संताप के विस्मरण की सच्चाई को प्रेमी जानता है, इसीलिए उसमें स्त्री का दूसरे प्रेमी के साथ अतल जल में मगन बह जाने का जिक्र है। इसमें ईर्ष्या या एक प्रेमी व्रत की इच्छा नहीं है, बल्कि एक प्रेम के बाद उसे विस्मृति के गर्भ में फेंक कर फिर से प्रेम करने और पहले प्रेमी के द्वारा उसे मुक्त भाव से स्वीकारने की स्थिति है। सिर्फ वह अतीत की एक हल्की सी पहचान चाहता है। यह प्रेम चित्रण का एक सर्वथा नया ढंग है। यह उस तरह का पारंपरिक परकीया भाव नहीं है जिसका चित्रण हमारे रीतिकालीन कवियों ने काफी मुखर होकर किया है, बल्कि यह प्रेम संबंधों को मुक्त होकर एक नए धरातल पर स्वीकारने की इच्छा का प्रतिफलन है। इसीलिए यह कविता सीधी सादी विरह की कविता न होकर बहुत गहरे उतरती है। विरह या वियोग दुख को उसकी पारंपरिकता से मुक्त रखने के लिए निराला ने इसी तरह के और भी दूसरे प्रयास किए हैं। अर्चना की कविता आँख लगाई में यह प्रयास व्यंग्य और शब्दों के प्रतीकार्थ को प्रयुक्त करके निकाला गया है। जैसे बन आई वह की दूर हुई सगाई में सगाई के पारंपरिक कविराना अर्थ का प्रवेश कराकर पृष्ठ संख्या 51। इसी तरह बांधो ननाओं में उस प्रेमिका को उस सौंदर्यमयी हंसी के द्वारा ही बहुत कुछ अभिव्यक्त कर देने वाली स्त्री को दांव देने वाली कहकर उसमें नियोजित स्मरण भाव को दुखद की जगह हल्का और भार मुक्त करने की कोशिश कवि ने की है। इसके अतिरिक्त इस कविता को पारंपरिकता से मुक्त करने के लिए निराला ने उसे स्थानीयता और भोलेपन के ताजे रंगों के कई कई कोट्स चढ़ा दिए हैं। इसीलिए उसकी सहजता और ताजगी दुख या आत्मसंताप की अनुभूति न कराकर एक सुखद भोलेपन में डुबा देती है। इसी तरह डूबने पर इस कविता में से एक फकीराना अर्थ भी उभरता है जो मुक्तता का एहसास अधिक कराता है, दर्द का कम। पता नहीं क्यों इसे पढ़ते हुए मुझे बार बार नवीन की कविता हम अनिकेतन की याद आती है। वैसे ऊपरी तौर पर इन दोनों कविताओं में कोई साम्य नहीं है, लेकिन जैसे लगता है बार बार ठोर खोजने वाले अस्थायित्व की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को हर जगह से उखड़ना और आगे बढ़ना पड़ रहा हो। अंततः इस तरह अनिकेतन रह जाने और लगातार बहते जाने की प्रक्रिया ही जैसे उस व्यक्ति की नियति बन गई हो। जैसे वहाँ ठहर जाने पर लोग शक करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि इस स्थान विशेष की तुम्हारी जो निजी परिचित है वे उसे नहीं जानते, तुम्हारे स्मरण में बसे हुए उस अतीत के भोले सौंदर्य को नहीं पहचानते, इसीलिए तुम्हारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। वह तुम्हारी मौन भाषा तुम्हारे अंदर बसे हुए सौंदर्य को कैसे उद्घाटित करेगी? पूरा गांव तुम्हारी उस स्मरण संचित भाषा को नहीं समझेगा, अतः यहाँ से चले चलना ही ठीक है। उदासी और अवसाद की यह झीनी रेखा इस कविता में सर्वांत फैली हुई है। दरअसल इस गीत को पढ़ते हुए अक्सर तुरंत यह समझ में नहीं आता कि इसके अंदर छिपी वह कौन सी विशेषता है जो हमें तुरंत पकड़ लेती है, लेकिन जैसे जैसे हम डूबने लगते हैं उसके सौंदर्य की पारदर्शिता में सब कुछ झलक मारने लगता है। बांधो ना नाव इष्ठाओं बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी, धस कर आंखें रह जाती थी, फंस कर कपते थे दोनों पाँव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। पृष्ठ संख्या 52। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाम बंधु। शायद सबसे पहले इस गीत की सहज सरल भाषिक संरचना ही पाठक को आकर्षित करती है। उसके अपनेपन में, उसकी सहजता में वह कुछ इस प्रकार खो जाता है कि अर्थ सौंदर्य की तह दर तह का उद्घाटन फिर वह नहीं करता। निराला की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इतनी सरल भाषिक संरचना में उन्होंने उदासी और आत्म साक्षात्कार का इतना गूढ़, सूक्ष्म और गहरा संयोजन किया है। इस प्रकार ऊपर के विवेचन में हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि उन्होंने प्रेम के वियोग पक्ष का चित्रण किया है, उनका मन और रचनात्मक जीवन इसे अपने अनुकूल नहीं पाता, क्योंकि वह प्रेम को आत्म जर्जर, संतप्त या रिक्त कर देने वाला तत्व न मानकर व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाला तत्व मानते हैं। उसे वह सांसारिक दुख बोध भय बाधा आदि को समाप्त करके निष्काम आत्ममुक्ति का तत्व मानते हैं। इसीलिए जहाँ स्नेह निर्झर के बह जाने और रेत की तरह शरीर के टूट जाने का अवसाद भी व्यक्त हुआ है, उसे अंत में ले जाकर निराला पूर्ण काम की मना स्थिति में घुला देते हैं। कहीं दैन्य वहाँ नहीं घेरता है, बल्कि उसकी जगह अपनी उपलब्धि, अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर पाने का उच्छल गर्व अधिक व्यक्त हुआ है। ढहे हुए जीवन के समृद्ध ऐश्वर्य की अनुभूति उन्हें निरामय और पूर्ण बनाती है। इसके अतिरिक्त भी जहाँ प्रेम में आत्मसंताप की कठिन अपरिहार्य अनुभूति उन्हें घेरती है, वहाँ भी वह विरह जर्जर नहीं दिखाई देते, बल्कि एक सरल और कातर प्रार्थना पर उतर आते हैं। कह रहा हूँ जो कथा बज रही उसकी व्यथा, या चरण चलते रहेंगे निश्चरण पर सर्वथा। दुख मिला जिसको जिलाया, दुख दे मत दल मलो। बनो बासंती मृदुल पत्रिका तरुकी अतुल, फिर सुरस संचारिका सुख सारिका उसकी मुकुल। फिर मधुर मधुदान से नौ प्राण दे दे कर फलो।